ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सप्तम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 32, 33 और 34। इसमें 34 श्लोक है, इसको आवृत्ति करेंगे।
त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते। तत्रानुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि।
तो क्योंकि तीन श्लोक है, 32 और 33 में तात्पर्य नहीं, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे, उस श्लोक और अनुवाद को। श्लोक नंबर 32।
रुदत्य उच्चैर् दैताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्य अस्त्रे कुचकुङ्कुमारुणे विस्त्रस्तकेशाभरणाङ्शुचङ्गृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया बिलेपिरे।
रानियों के जोर जोर से रोने पर उनके आंसू वक्षस्थल पर लुढ़काए थे, जहां वे कुमकुम चूर्ण से लाल होकर फिर उनके पति के चरण कमलों पर गिर पड़े। उनके केश बिखर गए, उनके आभूषण गिर गए और अन्य के हृदय में सहानुभूति जगाती हुई रानियां अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी।
अहो विधात्रा करुणेन न प्रभु भवान प्रणीतो दृग गोचरांग दशाम उसी नराणाम मसी वृत्ति दह पुरा कृतो धुना ये न शुचांग विवर्धन।
हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हैं। इसके पूर्व आप उसी नर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे, जिससे वे सुखी रहते थे, किंतु अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी है। अब श्लोक 34। तो या कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते। तत्रानुयानं तव वीर पादयोः सुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि। अनुवाद। हे राजन, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे और हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हे वीर, आप जहां भी जा रहे हैं कृपया करके हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके पदचिन्हों का अनुसरण कर सकें और पुनः आपकी सेवा कर सकें, हमें भी अपने साथ ले चलें। तात्पर्य, पुराने जमाने में क्षत्रिय राजा सामान्यतया कई पत्नियों के पति हुआ करते थे और राजा की मृत्यु होने पर, विशेषतया युद्ध भूमि में मरने पर, सारी रानियां पति के साथ सहमरण स्वीकार करती थी, क्योंकि वही उनका जीवन होता था। जब पांडवों के पिता पांडु महाराज मरे तो उनके दो पत्नियां थी, एक युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन की माता और दूसरी नकुल तथा सहदेव की माता थी, और वे दोनों ही अपने पति के साथ चिता में जल मरने के लिए तैयार थी। बाद में ऐसा समझौता हुआ जिससे कुंती तो छोटे छोटे बालकों की रखवाली के लिए जीवित रही और दूसरे पत्नी माद्री को पति के साथ मरने की आज्ञा दे दी गई। यह सहमरण की प्रथा भारत में ब्रिटिश शासन तक भी चलती रही, किंतु बाद में इसे हतोत्साहित किया जाने लगा, क्योंकि कलिजुग की प्रगति के साथ ही पत्नियों की मनोवृत्ति क्रमशः बदल गई। इस तरह सहमरण की प्रथा एक तरह से उन्मूलित हो चुकी है। तो भी मैंने 50 वर्ष में एक डॉक्टर की पत्नी को पति के मृत्यु के तुरंत बाद स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करते देखा। पति पत्नी दोनों को सवजान में जुलूस के साथ ले जाया गया। पतिव्रता पत्नी का पति के लिए ऐसा प्रखर प्रेम अत्यंत अनूठा है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कुछ आप में है जो कि आज पहले आज के दिन कथा में आए हैं क्लास में, तो आप लोग के लिए थोड़ा पूर्वापर प्रसंग बताना उचित है। ये प्रसंग चल रहा है सातवां स्कंद में। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष वध हो चुका है, बराहदेव ने उसको वध कर चुके हैं। असुरराज हिरण्यकश्यप अब समझा रहे हैं हिरण्याक्ष के पत्नी, उनके माँ और उनके बाल बच्चों को जो रो रहे थे उनके डेड बॉडी के पास, उनको समझा रहे हैं। ये श्लोक कंटिन्यूअसली हिरण्यकश्यप के द्वारा बोला गया है। हिरण्यकश्यप वाच तो हिरण्यकश्यप समझाने लगा अपने अपने भाई के पत्नियां और भी कई पत्नियां होंगे उनके और उनके जो से संबंधियों को, तो बहुत सुंदर प्रवचन किया शरीर और आत्मा के बारे में। आत्मा का अनश्वरता अविनाशिता और शरीर का विनाशता और कैसे बिल्कुल भगवद गीता की दूसरा अध्याय का अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। भक्ति शास्त्र क्या होगा जरूर। अब उन्होंने समझाया तो उसके बाद में उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक कहानी बताया। बोला देखो आपको पता नहीं आप ऐसे रो रहे हैं, ये तुच्छ शरीर और आत्मा के भिन्न बताकर ये कहानी बताया। बोला एक समय की बात है, एक राज्य था, राज्य का नाम था उसीनर प्रदेश। उसीनर के राजा बड़े प्रतापी राजा थे, उनके कई पत्नियां होती थी, कई पत्नियां थे। तो एक बार युद्ध में वो उसीनर के राजा हार गए, मर गए, वीर गति के प्राप्त हो गए युद्ध भूमि में। और फिर उनके दशा का वर्णन किया हिरण्यकश्यप ने, पड़ा जैसे आंखों देखा हाल, राजा कैसे मरकट के युद्ध भूमि में पड़ा था, उसका डेड बॉडी कैसे, उनका आंख था कैसे, मुंह था कैसे, दांत था कैसे, उनका हाथ कटा हुआ था, अस्त्र पकड़ा था, ये बिल्कुल बड़े इस प्रकार वर्णन किए। उसको वर्णन उस मरा हुआ उसने राजा के सब को युद्ध भूमि में कैसे मर के पड़ा था उसका भीषण वर्णन करने के बाद हिरण्यकश्यप ने, तो अभी ये डेड बॉडी के पास उनके जो पत्नियां उसी ने राजा के पत्नियां रानियां, वो जा करके कैसे विलाप कर रही हैं, रो रही है उसको वर्णन अभी तीन श्लोक में कर रही है। आगे चल करके वो कहानी में आएगा कि जमराज बालक के रूप में आएंगे और कैसे उपदेश देंगे। तो अभी ये तीन श्लोक में हम देखते हैं उनके जो उसीनर राजा जो कहानी हिरण्यकशिपु बता रही है, उसीनर राजा मर चुके हैं और उनके रानियां समर प्रांगण में युद्ध भूमि में उनके पति के डेड बॉडी के पास पहुंच करके रो रही है। कैसे रो रहे? रुदंत उच्चेर दैतांघ्रि पंकजम, और उनका चरण के पास जाकर पहुंचे। ऐसे शोक विभोर थी कि अब उनसे आंखों से आंसू बह रही थी। वो आंसू बह करके उनके बक्ष स्थल पर स्तनाग्र को जिसमें कुंकुम लगा हुआ था वो केसर कुंकुम को स्पर्श करके लाल लाल हो गए थे आंसू, और आंसू लाल आंसू गिर करके उनके पति के सब के चरण को धो रहे थे, चरण में गिर रहे थे। इस प्रकार हिरण्यकशिपु एग्जैक्ट जैसे पता नहीं किसे देख रहा था सीसीटीवी ला कर, क्या बिल्कुल ऐसे देख कर वर्णन कर रहा है कैसे उनके चरण में गिर रहे थे। और उनके केस और गहना सब बिखर गया। केस और गहने ऑटोमेटिक तो खोल देते हैं विधवा होने से, सब गहना उतार देते हैं वो केस खोल देते, तो उनका सब ऐसे केस बिखर गए, गहना सब ढीले पड़ गए खुल गए। और इस प्रकार से करुण क्रंदन की विलाप करने लगी कि आसपास में जितने जनसमुदाय थे सबके अंदर शोक संतप्त हो उठा, शोक संचारित हो गया, सबके सहानुभूति जग गया। वाह कितने दुख है, कैसे रो रहे हैं। सबके अंदर ऐसे सहानुभूति क्रिएट करके सबके अंदर शोक संचार करते हुए विकल भाव में क्रंदन करने लगी, विलाप करने लगी। आगे क्या है 33 नंबर बोलते हैं, अहो विधाता, और वही करुण स्वर में विधातक बोलते हाय विधाता तुमने क्या किया, हे प्रभु अब हमारा ये पति को हमसे ले लिया, छीन लिया, अब उनके साथ हम रहती थी अब उनसे ले लिया, हमसे अलग कर लिया। अरे ये देशवासी उसीनर प्रदेश के लोगों को उन्होंने पालता था, उन्हीं को पोषण करता था, अब वो चले गए, वो सब दुखी हो रहे हैं, उनके दुख के कारण है। अब कैसे हम लोग का कैसे पालन पोषण कौन करेगा, हम लोग का देखभाल कौन करेगा। तो अभी इस श्लोक में कह रहे हैं त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते, बोले ओहो हो आप कैसे थे, हम आपको कैसे भूल सकें। हे राजा आप हम लोगों को कितने प्रेम करते थे। कृतज्ञ का कहने का मतलब है हम कभी छोटी सी छोटी सेवा करते थे आपके तो आप उसको बहुत बड़ा करके मानते थे, हमको बड़ा सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे, यही कृतज्ञता है। छोटी सी छोटी कोई सेवा को जो बहुत बड़े माने और जो नहीं माने, बड़ी सेवा को भी नहीं माने, कृतज्ञ है। लेकिन कृतज्ञ थी तो उनको याद करके रानियां कहते हैं कि आप हमारे छोटी सी छोटी सेवा के लिए कितने हमको सराहना करते थे, कितने हमको बढ़ावा देते थे, प्रशंसा करते थे, आपका आप सचमुच कृतज्ञ है। कथंग बिना श्याम सुपते नते, तो बोलते हैं कि आपके बिना फिर हम कैसे रह सकेगी। आप आज हम लोग को छोड़ करके चले गए, आपके बिना, आपके सहानुभूति पोषण के बिना हम कैसे टिक सकें, कैसे जी सकते हैं। त्रत्रानुदान तब वीर पादय हो, हे वीर आप तो चले गए वीर गति को प्राप्त करके, हम ही आपके बिना कैसे रह सकते हैं, तो कृपा करके हमको भी आदेश दीजिए, हमको भी आपके साथ ले चलिए, हमको भी आज्ञा दीजिए कि हम भी आपके लोग को प्राप्त करें, आपके साथ जाएं। इस प्रकार की प्रार्थना करके क्योंकि जाके क्या करेंगे ना, आपकी सेवा करेंगे, जैसे आपकी सेवा यहां करती थी, आप जहां जाएंगे आपके पीछे पीछे वहीं जाकर आपके चरण की सेवा करेंगी और हम राम जीवन को धन्य करेगी, यही पत्नी धर्म है। तो इस प्रकार रोती बिलखती उस उसीनर की राजाओं की पत्नियों ने इस प्रकार विलाप कर रही थी, इसी को हिरण्यकशिपु ने बता रही अपने संबंधियों के सामने। तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुराने जमाने में क्षत्रिय राजा अनेक पत्नी रखती थी, अनेक पत्नियों के पति हुआ करते थे, कई शादियां होती थी। अब तो कई अब सुने होंगे, एक तो भागवत में वर्णन आता है चित्रकेतु महाराज का, जिनका केवल 1 करोड़ पत्नी थी। अब पता नहीं कैसे उनका टर्न आता होगा, पता नहीं जो भी हो। और ऐसे ऐसे 1 करोड़ पत्नी, और फिर किसी का संतान नहीं हुआ, अपुत्र कर रहे उन्होंने, बड़े मुश्किल उनका। तो ऐसे ऐसे कितने कितने राजा लोग, कितने हम कृष्ण बुक में पढ़ते हैं, भागवत में, जब भगवान के पिताजी वसुदेव और देवकी का विवाह होता है, तो वसुदेव के देवकी तो लास्ट पत्नी है, उनका पहले 16 पत्नी और थे उनके, और देवकी के 7 बहन थे, वो 7ों को 7 उनके शादी किए थे, उनका सारे बहने तो उनके को वाइफ होंगे, हाँ सारे उनको शादी किए थे, और भी यहां से तहां से 17 वाइफ्स थे उनके कम से। और ये वर्णन आता है कि जब देवक महाराज और उग्रसेन महाराज और कंस महाराज, ये तीनों मिलकर के देवकी को इतने प्रेम करते थे, उनके जो शादी के समय बेटी को देते हैं ना, क्या बोलते हैं, दहेज, दहेज आजकल डाउरी बोलते ना, दहेज बोलते हैं, जो भी है जो दे रहे थे, तो इतने दिए, आप जो लिस्ट पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे, कई हजारों कार दिए, कार मतलब रथ, हजारों संख्या में ट्रैफिक जाम हो जाएगा, इतने कार कैसे दिए पता नहीं, कई हजारों रथ दिए, कई हजारों दासी दिए, युवती दासी जो स्वर्ण अलंकार विभूषित थी। तो मतलब जो एक बेटी के विदाई में ये सब देते हैं, जो 7-7 बेटी सबके साथ ऐसे दिए होंगे, तो कितने, ये तो विधिवत वाइफ, विवाहित वाइफ 17 हैं, और उनके साथ जो उनके दासी बनकर आए होंगे कई हजारों होंगे। तो राजाओं को, राजाओं के सब ऐसे हुआ करता था, बड़े बड़े सब समर्थ क्षेत्रीय राजाओं को होते थे, अनेक अनेक पत्नियां हुआ करती थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वो राजा, तभी जमाने में जो राजा होता था, उनको जो लड़ाई होता था, राजा सामने जाता था, आजकल का जैसे नहीं, जो नेता होते हैं वो पीछे अपना घर में कमरे में बैठेंगे ब्लैकआउट करके, लड़ाई हो रहा है कोई देख ना ले, और बेचारे सैनिक वो जाएंगे लड़ेंगे मरेंगे बॉर्डर में, ऐसा नहीं, राजा सामने होते थे, सेनापति और राजा, बाकी सब सैनिक पीछे रहेंगे, वो बिल्कुल फ्रंट लाइन में होते थे, सम्मुख युद्ध हुआ करता था। तो वो राजा जब दूसरे राजा से लड़ते थे, क्षत्रियों का स्वभाव होता है लड़ना, खुनखार होते हैं लड़ाई के समय में, लड़ते थे, उनका क्षत्रियों का स्वभाव है कि अगर लड़ते समय में आपको हारने लगा, आपको अब जो पीछे भागे, तो क्षत्रिय धर्म नष्ट हो गया, मर जाओ लेकिन पीठ मत दिखाओ, सामने से लड़ते लड़ते मर जाना, इसी को कहते वीर गति प्राप्त हो गया, उनके गति प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके हथियार कट गया, हाथ कट गया, आप डर के मारे पीछे भागे, तो आपके धर्म नष्ट हो गया। ऐसे हमने सुनी है कि झांसी के जो रानी थी क्षत्रियानी, उनके पति एक एक उनका विवाद हुआ था, दूसरे राजा के साथ लड़ाई हुआ था, तो राज्य के प्रांत में लड़ाई हो रहा था, और राजा गए थे लड़ने के लिए, लेकिन दूसरे जो राजा था बड़ा बलशाली था, पराक्रमी, तो राजा उनको इतने वो मार सहन नहीं कर पाया, झांसी के राजा, तो उन्हें भाग कर आ गया, छोड़ करके भाग करके आ गया, घोड़ा पकड़ करके भाग के आ गया। जैसे आया और रानी ने देखा कि उनका पीठ में घाव है, जब घर में आया बोला गेट आउट, उनके पत्नी ने निकाल दिया उसको, घर में नहीं घुसने दिया, बोला पीठ में घाव कैसे हुआ, तो मतलब भागे अपने, अब लड़ाई छोड़कर भागे और पीछे से मारा, आपके पीठ में स्पट है, सामने होना चाहिए था, क्षत्रियों का पीठ में घाव नहीं होना चाहिए, सामने मरे तब तक पीठ नहीं दिखाए, आप डर के मारे भाग कर आए, तुम हमारे पति के लायक नहीं, निकल जाओ यहां से, निकाल दिया उनके पति को, पत्नी ने राज्य से उन्हें घर से निकाल दिया धक्का मार के, बोले गेट आउट, और स्वयं सेनापति बनकर लड़ने के लिए गई। तो ऐसे ऐसे होते हैं सब, ऐसे ऐसे क्षत्रिय धर्म के पुरुष स्त्री दोनों में ऐसे क्षत्रिय क्षत्रियाणी हुआ करती थी, युद्ध लोलुप हुआ करती थी। तो इस प्रकार ये उसनेर राजा जो क्षत्रिय राजा थे, तो उनने लड़ाई में उनके शत्रु बलवान थे, तो वहां उनका मृत्यु हुआ, वीर गति को प्राप्त हुए, और कैसे मर के पड़े, शत्रुओं ने उनके हाथ काट दिए, उनके अस्त्र कट गया, भुजा कट गई और बिल्कुल ऐसे कलिजा फट गया है, इतने जोर से मार मारे थे, हृदय से कलिजा फट गया था, वो इतना ब्लीडिंग हो रहा था और बिल्कुल दांत गुस्से में ऐसे करके दांत को दबाए हुआ था और इस अवस्था मर के पड़ा था। उनके मुकुट मुख सब धूल में धूसरित हो चुका था, इसे भयानक वर्णन करके ऐसे मर पड़े थे उस नर के राजा, और वो रानियां जाकर के उनको पकड़कर रो रही हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि रानियां जो जाकर के प्रार्थना करती हैं अपने पति के डेड बॉडी के चरण में बैठ करके, और बोलते हैं कि हमको तो छोड़कर आप चले गए, और उनका गुण को याद करते हैं, आप कैसे अच्छे थे, अभी आप जहां चले गए हमको भी यहीं ले जाइए, मतलब हम पति लोग को प्राप्त करना चाहते हैं, आप जहां गए हम भी वही जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके सेवा करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रथा भारतवर्ष में कई वर्षों से था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको बंद कर रोक लगाया, ये उसको सती प्रथा कहते थे। पता नहीं सती के मतलब पति के प्रति अनुगत रहना और पति के सबके साथ जल जाना कोई सती नहीं है, हाँ वो माना जाएगा कि इनके, लेकिन कभी कभी मैंने इसे वर्णन सुना हूं कई पत्नियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर आग में डालते थे, वो भाग जाते थे कहीं अरे जला में आग में, पकड़ पकड़ नहीं मरना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहता। किसी का सचमुच अनुराग है, स्वयं आकर के पति के चिता को गोद में लेकर के आग में बैठ जाए, इतना किसी का हो तब तो माना जाए, अरे ये पकड़ पकड़ कर ला जबरदस्ती आग में डालें ये तो ठीक नहीं है। लेकिन इस प्रकार का अत्याचार हुआ शुरू हुआ रहा था कभी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय उसको बंद रखा, राजा राममोहन राय प्रसिद्ध सती प्रथा को बंद कराए थे। इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने 50 साल पहले, प्रभुपाद जी ने देखे बोले मैंने देखा था एक डॉक्टर के वाइफ, जब डॉक्टर ने मर गया वो भी शरीर छोड़ दी, मतलब उनको जलाया नहीं गया, जिंदा आग में नहीं डाला, वो उनके पति के मृत्यु पर इतने दुखी हुआ कि उनका भी प्राण छूट गया शरीर से, तो दोनों के लाश एक चिता पर जला, सहज सब यात्रा में दोनों लाश लेकर गए और दोनों एक साथ में जला, ये देखे हैं, बोलते हैं इस प्रकार अनुराग होता था पत्नियों के पति के प्रति। तो प्रभुपाद जी ने एक महाभारत से कहानी उल्लेख की है इसमें सहमरण के समझाने के लिए, वो पंडु महाराज का बात उदाहरण किए हैं। बोलते पंडु महाराज आप जानते हैं वो धृतराष्ट्र के भाई थे, डायरेक्ट व्यासदेव के पुत्र थे, धृतराष्ट्र पंडु और विदुर ये तीनों व्यासदेव के पुत्र थे, अब व्यासदेव तो सब भगवत अवतार हैं, वाङ्मय अवतार, तो उनके पुत्र थे और बड़ा थे धृतराष्ट्र, लेकिन अंधा होने के कारण रिजेक्टेड हो गए, पोस्ट में उनको रखा नहीं गया, सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, और उसके नंबर आया फिर पंडु के, पंडु सिलेक्ट हो गए, और विदुर जी क्योंकि वो दासी पुत्र थे इसलिए उनको भी सिलेक्शन नहीं किया गया, वो मंत्री बनकर रहे, धृतराष्ट्र तो यही से पेंशन लेकर बैठे, अंधे थे और क्या है, और बाकी पंडु महाराज राजा हो गया, हस्तिनापुर सम्राट, कोई हजार वर्ष से इतने बड़ी साम्राज्य के अधिपति बनना, पंडु महाराज थे। तो उन्होंने विवाह किए अब भगवान कृष्ण के बुआ होंगे, उनके पिताजी के बहन वसुदेव के सगे बहन कुंती हैं, सुरसेन की जो 10 पुत्र और 5 पुत्री थी उसमें से एक प्रथा थी, बाद में कुंती भोज जो उनके गोद में ले तो उनका नाम कुंती पड़ी, नहीं तो प्रथा उनका पहले का नाम था, सुरसेन के बेटी हैं, सुरसेन के 10 पुत्र में बड़े थे वसुदेव और उनके बेटियों में कुंती भी थी, तो बिल्कुल वसुदेव के सगे बहन और वसुदेव के पुत्र वासुदेव हुए, कृष्ण हुए। तो कुंती देवी भी शादी किए थे पंडु महाराज को, बहुत बड़ा राजा था उनका, उनके साथ शादी हुआ था। तो पंडु महाराज केवल एक पत्नी नहीं, वो दूसरी पत्नी भी विवाह किए थे, मद्रास के थे, माद्री उनका नाम था, मद्र राजा के पुत्री माद्री, तो कुंती और माद्री ये दोनों पत्नी थे पंडु महाराज के। अभी पंडु महाराज विवाह करके कुछ ही दिन के बाद, राजा लोग होते हैं लड़ाई अगरा करते हैं, वो तो बड़े दुर्दश वीर थे पंडु महाराज, पूरे पृथ्वी को लगभग उन्होंने जीत चुके थे। एक बार उन्होंने शिकार करने के लिए निकले मृगया के लिए, और शिकार के लिए जाते हैं राजा महाराजा प्रैक्टिस करते हैं जा करके, और शिकार में उन्होंने देखे एक हिरण दंपति, एक हिरण और हिरणी वो संभोग में रत थे। इसी समय में वो देखे तो ढूंढ रहे थे, मिले नहीं, वो बाण चलाए, बाण चलाया, जो मेल हिरण था उसमें बाण लगा, पुरुष हिरण था तो बाण लगा तो गिर पड़ा, छट छट होने लगा, मरण मृत्यु यंत्रणा में। तब तो उन्होंने मनुष्य भाषा में बोलने लगा, हो पंडुमर हरि, हिरण नहीं मनुष्य की तरह बोलता, बोलने लगा, क्योंकि ऋषि थे, किंदम ऋषि थे, और किंदम ऋषि और उनके पत्नी थे, इतने बैरागी ऋषि थे, उनका कुटिया घर आश्रम भाषण नहीं था। तो उन्होंने बताया कि देखो हम, मैं ब्राह्मण ऋषि हूं, ये मेरे पत्नी ब्राह्मणी है, ना फिर हिरण क्यों बने अपने, ऐसे क्यों बने? बोले कि हम संभोग करना चाहते थे लेकिन मनुष्य रूप में करेंगे, हमारा घर घाटी तो नहीं है, तो सामने गांव में बाजार में लोग हमको क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए हम रूप बदला दिए, हिरण हिरण बन करके इसी जंगल में थे। लेकिन अब इसी समय में आप हमको मारे, ये बहुत हिंसक हुआ, आप इतने बड़ी निष्ठुर कैसे बने, कोई भी ऐसा पशु पक्षी नहीं से नहीं चाहेंगे, आपने किया तो हम आपको मरते समय में अभिशाप देते थे, मैं अभी पुत्र उत्पन्न करते समय में पत्नी के साथ इसी समय मुझे मार दिया आपने, तो इसलिए आप भी पुत्र उत्पन्न करते समय इच्छा कर पत्नी संग करने मात्र से आपके भी छाती फट जाएगा, मर जाएंगे, पत्नी सहवास आप भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार साप दे दी, साप दे दिया। तो ये साप को सुन करके पंडु महाराज तो बड़े दुखी हो गए, बोले अभी देखो दो दो पत्नी मेरे है, ओ बहुत सुंदरी राजकुमारी है, और मोर के पुत्र ही नहीं होगा, अरे इतने बड़े राजा, हमारे राज कैसे चलेगा, हमारा परंपरा, बड़े दुखी होकर के आए। और कुछ दिन रहे, लेकिन वो जो साप है किंदम ऋषि का तो उनके मन में हमेशा रहा, और पत्नी को देखते उनके पास नहीं जा पाते, और बोले सब फीका पड़ गया उनको, राज सुख ये सब फीका पड़ गया। धीरे धीरे ब्राह्मण से कंसल्ट करके धृतराष्ट्र को सारे दायित्व दे दिए, बोले भैया आप संभालो, विष्णुआदि बोलकर बोले मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, जीवन में क्या है, जब राज सुख भोग नहीं सकता, पुत्र नहीं संपन्न, संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, बेटर तपस्या करूं। तो ब्राह्मण से सलाह लेकर के उन्हें तपस्या करने के लिए चल पड़े। दोनों पत्नी बोले हम भी जाएंगे तप करेंगे, हम आपके पत्नी हैं, हम यहां रहकर क्या करेंगे, आप जहां जाएंगे हमके साथ, आपका साथ हम रहेंगे। तो दोनों पत्नी को लेकर के पंडु महाराज हिमालय चल पड़े। अब ये सप्तस्रोत पर्वत हिमालय में, उत्तराखंड में हिमालय शिखर में, जहां हिमालय के 100 श्रृंग वाला पर्वत था, तो इस पर्वत के तलहटी में हजारों सैकड़ों ऋषि मुनि से तप कर रहे थे। ओ अलकनंदा के तट पर बहुत दिव्य भूमि था, यहां तपस्या कर रहे थे। उनके बीच में ये उपवन के बीच में जंगल में जा करके अपने एक कुटिया बनाए पंडु महाराज ने, और वहां पे रहने लगे, वो तपस्या करने लगे। वो तप करने लगे तो उनके दोनों रानी वो भी तपस्या करने लगी। वो वहां तो कोई बढ़िया फिस्ट खाने के लिए नहीं मिलता होगा, मुझे फल मूल खा करके तप करने लगे थे। बोलते हैं 12 साल तक ऐसे ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या कर रहे थे, और मन में उनका बड़ा दुख होता था पंडु महाराज का। देखो ऋषि मुनि सब आते थे, बैठते थे, बातचीत करते, बोलते देखो मैं अपुत्रिक रह गया, हमारा वंश कैसे चलेगा पता नहीं, जो भी हो। तो कभी कभी उनके पत्नी कुंती आदि कहते थे कि हम क्या करें। ऐसे महाभारत में वर्णन आता है, कुंती ने एक कहानी बताया उनके पति को, बोले आप क्यों डरते हैं, आप संतान, में संतान उत्पन्न करने प्रयास करूंगा तो मर जाऊंगा, ये मुझे अभिशाप है, आप नहीं जानते इसलिए मैं ये प्रयास नहीं करता हूं। तो कुंती ने एक कहानी बताया, महाभारत में आता है, कि बोला कि एक राजा थे, और उन्होंने ऐसे उनके रानी से संतान उत्पन्न करते समय उनका कुछ बीमार था, क्या हो मर गए, मर गए तो उनके पत्नी ने उनके पति के डेड बॉडी के साथ संभोग करके 3 पुत्र उत्पन्न किए थे मर जाने के बाद भी सबसे ऐसे वर्णन। तो आप क्यों चाहते हैं, आपने दुख क्यों होते हैं संतान करके, हम आपके 2-2 पत्नी हैं, आप संतान उत्पन्न कीजिए। तो बोला कि नहीं वो अलग था, मैं तो प्रयास करते ही मर जाऊंगा। तो फिर पत्नियों के ऐसे बात सुन करके महाराज पंडु भी बोलने लगे, बोले मुझे भी दुख लग रहा है कि आप लोग के दुख को देख करके, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप, मैं तो असमर्थ हूं प्रजा उत्पन्न में, आप दूसरे कोई पुरुष के द्वारा पुत्र उत्पन्न करें, वो मेरे पुत्र माना जाएंगे। कुंती आदि बोले ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं हो सकता, आप जीते जी हम कैसे कर। तो फिर इसी वार्तालाप में कुंती ने जो दुर्वासा ऋषि उनको एक वरदान मिला था उसकी बात कही कि मेरे बचपन में थी, मुझे दुर्वासा की वरदान मिला था, मैं अगर किसी देवताओं को भी आवाहन करूं वो देवता आ जाएंगे और हमसे पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये नहीं बताया कि कर्ण में हुआ था करके, जो टेस्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो पता नहीं, लेकिन ये बताया कि मेरे पास मंत्र है। पंडित महाराज बहुत खुश हुए, बोले देवता आ सकते हैं, देव पुत्र। बोले ऋषियों ने बोलते थे कि आपके पुत्र देवता जैसे होंगे, मैं तो विश्वास नहीं कर रहा था, ऋषि मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो पुत्र उत्पन्न कर ही नहीं सकता। अरे रे रे, सच में इससे बड़े बड़े ऋषि मुझे यही बात कहा करते थे, तो प्लीज गो हेड, आप मंत्र उच्चार कर दे। तो बोले कि मैं अपने मन से मंत्र तो मुझे जब शादी नहीं की थी तब से मिला है, लेकिन मैं आप जो बोलेंगे मैं कर, आपका क्या चाहते हैं। तब दोनों ने सलाह करके पंडित महाराज ने बोले मैं चाहता हूं कि आप धर्मराज को बुलाओ। तो ये धर्मराज को मंत्र पढ़े कुंती महारानी ने, तो धर्मराज स्वयं प्रकट हो गए। और धर्मराज प्रकट हुए और कुंती से धर्मराज युधिष्ठिर को पैदा किए। और बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, बहुत सब खुशी हुए, बहुत खुशी हुए। तब कुछ दिन बीते तो पंडित महाराज बोले नहीं, एक पुत्र नहीं और भी कर सकते हैं ना, आप बोलिए ना। मैं सकता हूं, ये तो धर्मराज हो गए, एक बलवान पुत्र होना चाहिए। अब देवताओं में बलवान वायुदेव है, वायुदेव को बुलाओ। तो वायुदेव को बुलाए तो वायुदेव के द्वारा कुंती को और एक पुत्र हुआ, भीमसेन, बड़े पावरफुल। भीमसेन जब पैदा हुआ, कहते हैं कि कुंती माता गोद में ली थी, वायुदेव वरदान देकर चले गए, गोद में ली थी, रो रहे थे गोद में उसको, रो मत रो। तो इसमें पैर उछाल रहे थे, अभी जन्म हुए थे सद्य शिशु, पैर उछाल रहे थे। एक हिमालय का बहुत बड़ा श्रृंग था, श्रृंग समझते ना, शिखर, एक शिखर था, बहुत बड़े चट्टान का भीषण शिखर था, उसमें पैर टच हुआ, छोटा बच्चा पैर उछाल तो वो उड़ गया, उखड़ गया, वो पर्वत के शिखर उखड़ गया। अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था पैर उछालने से। तो माता कुंती उसको देखी, बोला बाप रे बाप, ये जन्मते ही इतने पावरफुल। तो इसलिए कुंती माता को पता था उसको कोई नहीं हरा सकते, ये महाबली होगा, वायुदेव ने उनको इतने पावर दिए हैं। तो इस प्रकार भीम हुआ। तो कुछ दिन के बाद पंडित महाराज बोले, संतोष बोले और एक बेटा होना चाहिए ना, आप बोलिए ना, ऐसा करो इंद्रदेव को बुलाओ, देवराज इंद्र है। तो देवराज इंद्र को आवाहन किया, तो इंद्रदेव आए, तो उनसे अर्जुन प्रकट हुए। और तीन तीन देव पुत्र, धर्म पुत्र, वायु पुत्र, देवराज इंद्र के पुत्र। और उनके जो दूसरे वाइफ थी माद्री, वो मुख सुखाकर बैठी, बोला देखिए मेरे दीदी के, मतलब उनका क्या बोलेंगे, जो बोलते होंगे, जो उनके तीन तीन बेटे हुए और मेरे को यही नहीं, मुझे तो उनके दुख दिखाने गए। पंडित महाराज एक दिन बुलाए कुंती को, बोले ऐसा करो तो उनको थोड़ा दिखा दे दो, मंत्र बता दो उनको, तो वो भी एक पुत्र। तो कुंती ने बोले जैसे आपकी इच्छा। तो माद्री को बता करके उनको भी मंत्र सिखा दी। तो इस मंत्र के आवाहन में तो माद्री पूछी, मैम किसको बोले, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार जो वहां के डॉक्टर है देवताओं के। तो दोनों भाई आए और दोनों भाई दो पुत्र उत्पन्न किए, नकुल और सहदेव, माद्री के पुत्र हुए। इस प्रकार पांच पुत्र देव पुत्र प्राप्त किए पंडु महाराज, जो स्त्री के स्पर्श नहीं कर सकते, देवताओं के वर्ष। और ये खबर पहुंच गया कैसे भी कैसे हस्तिनापुर में। अभी तक धृतराष्ट्र महाराज का पत्नी गांधारी तो बेगनाड थी, अभी लड़का ही नहीं हुआ था, बोले गाली झगड़ा हुआ उनके घर में भारी। वो घटना में नहीं कहना चाह रहा हूं क्या हुआ घटना, तो जो भी हो। तो वो जब पांच पुत्र वही जंगल में रहे, बड़े ऋषि महर्षि आए, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, देवताओं के पुत्र थे वो, तो शुरू से ही बहुत तेजस्वी थे सब। तो किए तो कुछ दिन पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। कुछ दिन के बाद में माद्री एक बार गई थी शाम के समय में जंगल से कुल फल मूल इकट्ठा करके लाने के लिए, और गए थे तो पंडु महाराज ने माद्री की शायद रजस्वला थी इसे कुछ थी, वो गई थी स्नान करने के लिए, इवनिंग के समय था, शाम के समय था, वो स्नान करने गई थी। और स्नान करने एक वस्त्र में थी, और स्नान करके जब आ रही थी तो ऐसे वर्णन आता है कि सूर्यदेव देखे माद्री को, माद्री के सौंदर्य से लुब्ध होकर सूर्यदेव के रथ खड़ा हो गया, स्टॉप हो गया, चला नहीं। शाम हो चुका था, सूर्यास्त भी नहीं हो रहा था, सूर्यदेव इतने आसक्त हो गए थे माद्री को देख करके। और वो जो कंदमूल आदि ग्रास आदि लेकर के पंडु महाराज आ रहे थे, तो उन्होंने देखे माद्री को अकेले आ रहे थे। इस प्रकार सूर्यदेव ने उसको नजर उसको देखे, माद्री की सुंदरता को, उसको रूप को देख करके, और पूर्ण महाराज संभाल नहीं पाए अपने आप को, तो उन्होंने जो फल में रख करके उन माद्री के पास गए। माद्री समझ गया पूर्ण महाराज क्या चाहते हैं, उनको मना किया करने पर भी महाराज पंड बोले ना, तो उन्होंने पति है उनके, और जब उनको उन्होंने आलिंगन करना चाहे तो आलिंगन करते, मना करती थी माद्री, फिर भी पंड महाराज ने फोर्स करके आलिंगन करना चाहे तो उनका छाती फट गया और वहीं गिर पड़, वहीं मर गए। तो माद्री ने सर पीट के रोने लगी, इतने करुण विलाप करने लगी, वही झरना से उठकर आ रही थी, और तो कुंती दौड़ कर गई, क्या हुआ, रो रही है, जाके देखा कि उनके पति अब छाती फट चुके, मर चुके हैं। अब चिल्लाए, बोले आप कैसे हुआ, आपके पति आसक्त तो मना नहीं किया आपने, आप कैसे एकत। तो वो तो रो रही थी, रो रो कर बोली, दीदी आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे हुआ, मैं तो पूरी प्रयास की थी, लेकिन। तब कुंती ने बोला कि भगवान की इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं, विधाता ही चाहता था कि हम दोनों है, अभी हम कैसे रहे, पांच पांच बच्चे हैं छोटे छोटे, पति नहीं रहे, जंगल में हमारा कुछ नहीं है, धन संपत्ति बैंक बैलेंस कुछ, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, कैसे चले, कैसे मेंशन होगा। तो बोले तो जो होगा देखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी हम दो दो पत्नी है और हमारे पति महाराज पांडु के डेड बॉडी पड़ा हुआ है, नियम तो यही है कि हम सती होना चाहिए, सहमरण करना चाहिए। तो दोनों चाहते थे सहमरण करने के लिए, दोनों पति के साथ सीता में जाना चाहते थे, लेकिन पांच पांच छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके कैसे कर सकते हैं, क्योंकि विधान नहीं है, जो प्रेग्नेंट होंगे जिनके बच्चे होंगे वो सीता में जा नहीं सकते हैं, ये नियम नहीं है। तो ये बोले, कुंती बोले, माद्री तुम रह जाओ, मैं जा रही हूं, मैं बड़ी रानी हूं, मैं पहले मैं पति के साथ जा रहा हूं पति लोक में, आप बच्चों के टेक केयर करना। माद्री बोला, दीदी आप ऐसे नहीं कर सकते। बोले मेरे वजह से पति का देहांत हुआ, मुझे आलिंगन करते करते उनका शरीर छोड़ा, तो उनका जो आशा पूर्ण नहीं हो पाया, तो ये आशा पूर्ण करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ना, आप बताओ ना। हाँ ठीक बात है, फिर मुझे जाने दीजिए, मैं पतिलोक जाके उनका आशा पूर्ण करूंगी, तो मुझे आज्ञा दीजिए। तो उसे बुझामना करके माद्री ने उस पति को साथ में लेकर के चिता करके उनके साथ साथ मृत्यु सीता में चली जाती है। और कुंती उनके जो तीन बच्चे थे और माद्री के दो बच्चे थे, पांच संतान के माँ के रूप में कुंती ने उनको लालन पालन की। इस बात को प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि इस प्रकार जो महीयसी महिलाएं होती थी राजपुत्रियां, तो वो भी ऐसे इतने उनके अंदर साहस हुआ करता था कि जीते जी अपने पति के डेड बॉडी को लेकर के जल जाती थी। हमको थोड़ा सा कहीं आग लग जाए, ओरी जल गया, पपला पड़ गया, कितने डरते, और जीते जी आग में जाकर बैठ जाए, आग के आंच देख करके हम पीछे हट जाते हैं, इतने कष्ट होता है, कैसे जल जाए। लेकिन किस प्रकार का अनुराग होता होगा उनका, किस प्रकार का डेडिकेशन होता होगा उनका। इसी बात को देते हैं कि ये जो उसनर के राजा के जो रानियां थी, वो लोग भी यही चाहते हैं कि आपके लोग को हम प्राप्त कर गई, लेकिन केवल साथ में जल जाने से प्राप्त होने की ये तो प्रथाएं हैं, लेकिन हम ये भी देखे हैं कि जो भगवान की भक्ति में जुड़े रहते हैं जो पत्नियां, अगर पति उनके भक्त है तो उनको बिना कुछ किए वो पति लोग को प्राप्त हो जाएंगे। कई ऐसे भागवत में ऐसे उदाहरण प्राप्त होता है, राजा ने भक्त होकर के भक्ति करके चले गए भक्ति करने के लिए, तो पत्नी घर में रह करके उन्हीं के मंत्र जो उन्हीं के जो भक्ति पथ को कठोरता से पालन करके वो भी इस लोक को प्राप्त कर गए, ऐसे वर्णन आता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल उनके साथ जल जाने से ही होगा, नहीं, हम देखते हैं शास्त्र में पूरी अभी तक भी लोक कथाओं में भी पांच सती पंच सती पंच कन्याम स्मरित नित्यम महापातक नाशनम, सुबह सुबह पांच स्त्रियों का नाम लिया जाता है पाप से मुक्त होने के लिए, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच सती स्परंग नित्यं महापातक नाशन। तो ये पांचों स्त्रियों का नाम लेना पड़ता है, बहुत बड़े पुण्य फल प्राप्त होते हैं नाम लेने से इसी पांच स्त्रियों का। और वो जानते हैं पांच स्त्रियों का सब एक से ज्यादा पति वाले थे, अरे सती कैसे हुए, उनके नाम लेने से धर्म हो जाते हैं। हाँ, अहल्या, अब जानते हैं ना अहल्या कथा, काली में कुछ स्टोरी में बुलाता अहल्या, इंद्र ने जिनको दर्शन किया, अहल्या, द्रौपदी, वो तो फेमस है, पांच पति तो एक थोक में होलसेल में लिए थे, तो अहल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, कुंती, ये पांचों को पांच, उन्हीं का नाम आज भी हिंदू समाज में लोग सुबह सुबह उठकर किसी पांच स्त्रियों के नाम लेते हैं ताकि पवित्र हो जाता है, हमारा बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो ये पांच फिर कैसे, ये तो सब एक पति वाले थे नहीं, मरने के बाद पति मर जाने के बाद दूसरे पति को प्राप्त किए थे, मंदोदरी रावण के बाद विभीषण को साथ रहे, और तारा ने बाली के बाद सुग्रीव के साथ रहे, अब सभी का ऐसे रिकॉर्ड है। तो कैसे, तो ये सब को ये लोक कथा भले कोई देखे ना देखे, लेकिन असली चीज जो महागुण है जिसके कारण उनके अंदर ये पावर आया, शक्ति आया, ये क्या है कि सब अनन्य भगवान के भक्त थे, सभी भगवान के भक्त थे, ये जितने पांचों को पांच स्त्रियां भगवान की समर्पित भक्त थी, भले समाज में रहने के लिए पति के दृष्टि पति रहते थे लेकिन भगवान के भजन करती थी सभी। इसी कारण से भले समाज में सबके एक से ज्यादा पति क्यों ना हो, कैसे भी हो, लेकिन उनके भक्ति के प्रभाव से वो इतने पुण्यवान, इतने महान हो गई कि आज तक भी कोई उनका नाम उच्चारण करने से पुण्य फल को प्राप्त करते हैं, पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए केवल सहमरण, अपने पति मर गया उनको लेकर के मर जाए कि जल जाए कुछ हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कितने सतियों का नाम लेते हैं जो आग में जले, आपको पता ही नहीं हो, जो आग में जले, कई भारतवर्ष में हजारों हजारों स्त्रियों को ऐसे जला दिए गए, वो जल भी गए हैं, उनका नाम किसी को पता ही नहीं, लेकिन ये जले नहीं है, पति मर गया, दूसरे पति को शादी कर लिए, उनका नाम अभी पुराण प्रसिद्ध है लिया जाता है। क्यों, तो ये जलना मरना ऐसे बेकार की बात है, असली बात है अपना जो कुछ है शक्ति सामर्थ्य सौहार्द प्रेम, वो भगवान को, असली पति तो वही है, असली पति वही है, उनकी सेवा करो अपना जो कुछ है तो आपने आप महान हो जाएंगे, आपने आप सती हो जाएंगे, आपके आप नित्य प्रति इतने पुण्यवान हो जाएंगे कि लोग हजारों साल तक आपका नाम गाएंगे अगर भगवान की भक्ति कोई करे। भक्ति ना करके केवल पति के साथ रहने से कोई पूछेंगे नहीं, ये मर जाएंगे, हाँ भले कुछ पुण्य मिले लेकिन बड़ी बात है ये पति के साथ रहो या कैसे भी करो, लेकिन भगवान को भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, ये हम सीखते हैं। तो लेकिन हिरण्यकश्यप बताते हैं कि ये जो उसी नर के पत्नियां ऐसे रो रहे थे अपने पति के सब के पास रह करके, अब आगे चल करके बोलते हमने वो छोड़ नहीं रहे थे, उनके बाकी राजकर्मचारी आए बोले उनको मृत्यु कर्म करना है, बाकी क्रिया तो करना, डेड बॉडी हो जाएगी तो उससे उनको संस्कार आदि करवाना है, चिता लगाना है, वो दे नहीं रहे थे, पकड़ कर रो रहे थे, उनको छाती पीट कर रो रहे थे। तो इसी समय में वो बोले क्या करें, वो रानियां नहीं छोड़ रहे हैं, हम कैसे करें, लाश को लेकर कैसे जलाएं कुछ काम। तो इस समय जमराज आते हैं, जमराज आकर एक बालक रूप लेकर के आकर के ऐसे उपदेश दिए तो वो छोड़ दिए, उनके बात सुन करके आसक्ति छूट गया उनका। ये सब पति को पकड़ कर होना, ये करना, ये सब भौतिक आसक्ति के परिचय है। अब हिरण्यकश्यप महाराज ने इस श्लोक कहने से कुछ श्लोक के आगे कहते हैं, बोले ये तो सब हम जैसे कोई पियाऊ में या कोई ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जब जाते हैं कंपार्टमेंट में, आपका बर्थ के पास और भी दो चार कोई बैठे होंगे पुरुष स्त्री, अब बातचीत होता है, संबंध हो जाता है, मित्रता हो जाता है, लेकिन उनका स्टेशन आया वो उतर गए, आपका स्टेशन आया आप उतर गए। ठीक इसी प्रकार पति पत्नी पिता पुत्र सब होते हैं, सबका स्टेशन अलग अलग है भैया, उनका स्टेशन आने से वो उतर जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा आपको, उनका संशो भी उतर जाएंगे। बोले ये सब थोड़ी देर के लिए अपना मान लिए संबंध है, ये सब मान्यता है, असलियत कोई हमारे संबंध नहीं है, संबंध केवल कृष्ण के साथ है, हम उनके हैं और वो हमारे हैं, केवल ही संबंध है, उसको छोड़कर ये सारे धोखेबाज झूठा संबंध थोड़ी देर के लिए होता है, इसके लिए रोना धोना होता है, इसी को कोई नहीं पूछते हैं, ये सब संसार के लक्षण है। लेकिन असलियत मनुष्य जन्म पा करके अगर हम इस बात को समझ ले और हमारा जो खोया हुआ संबंध, भुला हुआ संबंध को फिर उस असली संबंधी के साथ स्थापना करे, उन भगवान कृष्ण के साथ दोबारा हम संबंधित हो जाए तो इस मनुष्य जीवन सार्थक सफल हो जाए, है ना। नहीं तो जिन लोग ने, जिन स्त्रियों ने कई पति के साथ रहते हुए भी भगवान के संबंध को मेंटेन कर पाए, वो आज उनका नाम आज तक गाया जा रहा है शास्त्रों में पुराण में। ये पुण्यवान हो गई, भगवान के साथ संबंध जोड़ करके पुण्यवान हो गई। तो कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं शास्त्र में, गोपियां ने अपने पति को छोड़ करके रात में मिडनाइट में भाग करके कृष्ण के पास आए। अभी बड़े बड़े महापुरुष गोपियों के चरण रज के लिए प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा शिव तक, बोलेंगे मेरे पति छोड़ के भागे रात में, लेकिन नहीं, कोई उनको अवगुण नहीं कहता ना। कृष्ण के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी करो, पति छोड़ो, पुत्र छोड़ो, बाप छोड़ो, बेटे छोड़ो, घर छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, गुरु छोड़ो, अगर कृष्ण के लिए त्याग किया आप महान हो जाएंगे। कृष्ण के साथ संबंध करना बस यही जीवन के एकमात्र परम लक्ष्य है, यही एकमात्र परम उद्देश्य यही होना चाहिए। तो हमारे पास जो भी शक्ति सामर्थ्य जो भी कुछ है पूरे लगा करके एकदम से भगवान कृष्ण के साथ पुनर्संबंध स्थापन करना चाहिए, उनके भजन उनके सेवा करना चाहिए, इसी से हमारा मानव जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।